ओम शांति। गीत सुनकर बहुत नशा चढ़ा होगा, मसूबन में तो नशा चढ़ा रहता है और बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण जीवन में अपने भाग्य का, तकदीर का नशा तो चढ़ना ही चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि ये जो हमारी तकदीर है हमारे पूर्व पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। लेकिन अब ये सोचना है अभी ऐसा क्या करें जो हमारी भविष्य तकदीर भी ऐसी ही श्रेष्ठ बनेगी। आइए इसी विधि के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय राजू भाई जी। भाई जी, आपका सभा में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप बचपन से ही इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। 1972 से आप ईश्वरी यज्ञ में समर्पित हुए। ब्राह्मण जीवन का श्वास, हम सबकी प्यारी मुरली आप कंपोज करते हैं। पत्र पुष्प, अव्यक्त इशारे, दादियों के क्लासेस आदि सब हमें आपके द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावा आए हुए पत्रों के उत्तर देना, कई पुस्तकों का संकलन, हिंदी टाइपिंग के साथ साथ फोटोकॉपी, स्टेशनरी डिपार्टमेंट, ये सारी सेवाएं आप बखूबी निभा रहे हैं। ग्राम विकास प्रभाग के आप चेयरपर्सन भी है और इतनी सारी जिम्मेदारियां होते हुए भी आपको सदा हमने बहुत हल्का, बहुत हर्षित ही देखा है। तो आइए ऐसे विशेष हस्ति के द्वारा हम क्लास सुनेंगे। अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने की विधि क्या है, तकदीर की तस्वीर बहुत सुंदर बनाने की विधि क्या है, आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। सभी तकदीरवान बच्चे बाबा के घर में बैठे हैं। अपने को तकदीरवान समझते हो? बाबा ने कितनी सुंदर तकदीर बनाई। कभी कभी एकांत में बैठ करके अपने तकदीर की तस्वीर को देखो। गीत के शब्द हम सुन रहे थे, संगम युग पर बाबा ने अपने बच्चों को डबल ताज, डबल तख्त, डबल तिलक दिया है। इतनी ऊंची तकदीर है हम सब की। सभी अपने तकदीर की तस्वीर में देखना कि डबल तिलक मस्तक पर लगा हुआ है। एक है आत्मा रूपी चैतन्य सितारे का तिलक, दूसरा है विजय का तिलक। हम सब ब्राह्मण आत्माएं संगम युग पर माया जीत बनते हैं, विजयी बनते हैं। बाबा के बने, बाबा ने विजयी भव का वरदान दे दिया। बच्चे, विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो तिलक लग गया, तख्त भी मिला। हम सबको बाबा ने अपने दिल का तख्त दिया। एक एक बच्चे को दिल तख्त नसीन बनाया। सभी बाबा के दिल पर रहते हो? जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, जैसे माँ बाप अपने सपूत बच्चों को कहते हैं, ये तो मेरे दिल में रहता है। हम सब बाबा के दिल के मालिक, दिल तख्त नसीन बच्चे हैं। और दिल तख्त नसीन के साथ साथ स्वराज्य अधिकारी आत्मा को अकाल तख्त भी मिलता है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। ऐसा ही आसन है अकाल तख्त, जहाँ आत्मा निश्चिंत निर्भय होकर के रहती है। तो ताज भी मिला, तिलक भी मिला, तख्त भी मिला। ताज कौन सा है? एक तरफ विश्व कल्याण की सेवाओं की जिम्मेवारी का ताज है, और दूसरी तरफ जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है उतना वो लाइट का ताज, वो क्राउन सुंदर बनता जाता है। तो डबल ताज, डबल तख्त, डबल तिलक, इस संगम युग पर हर एक ब्राह्मण बच्चे को तकदीर में मिल जाता है, तकदीर में मिलता है ना। इसके लिए कोई पुरुषार्थ किया है क्या? लेकिन आज का विषय है कि तकदीर की तस्वीर बनाने की और क्या विधियां हैं, क्योंकि हम अपनी तस्वीर अपने मंदिरों में देखते हैं। जो हमारे यादगार जड़ मंदिर हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, श्री राधे, श्री कृष्ण, कितने सुंदर सजे सजाए, कितने आकर्षक मंदिर बने हुए हैं। शिव बाबा के साथ भी हम सबकी जब पूजा हुई तो शालिग्राम के रूप में हुई। आज बाबा सवेरे कह रहे थे कि बच्चे, तुम बच्चों का सुमिरन होता है, आत्मा का सुमिरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अभी पवित्र नहीं है, आत्मा को पावन बनाया। तो शालिग्राम के रूप में आत्मा की पूजा होती है। तो हम सब बाबा के बच्चे डबल पूज्य बन रहे हैं। ऐसी तकदीर संगम पर हमने बनाई जो इतनी सुंदर आकर्षक तस्वीर बन गई। क्या किया? कौन सा पुरुषार्थ किया? तीन बातों का पहला पुरुषार्थ हम आपको सुनाते हैं। जिस ब्राह्मण बच्चे ने उन्हीं तीन बातों पर ध्यान दिया उसकी बहुत सुंदर तस्वीर बन गई। तस्वीर बनाने वाले चित्रकार जब चित्र का निर्माण करते हैं तो विशेष फेस पर ध्यान जाता है, बाकी चित्र का इतना टेंशन नहीं रहता, लेकिन उसका चेहरा, उसके नयन, उसके मुख, उसका आभा मंडल, पूरे चेहरे की वैल्यू होती है विशेष तस्वीर के अंदर। तो बाबा ने हम सबकी आंतरिक तस्वीर बनाई और उस तस्वीर में हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, फिर हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, इसके आधार से संगम की ब्राह्मण आत्माओं की बहुत सुंदर एक रायल तस्वीर तैयार की। अपनी तस्वीर खुद खींचना, क्या इतनी पावरफुल एक बाबा की स्मृति सदा रहती है? अगर बाबा की श्रेष्ठ पावरफुल स्मृति रहती है तो वृत्ति भाई भाई की बन जाती है। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। हमारी वृत्तियों में सबके प्रति आपसी प्यार, स्नेह अपने आप उत्पन्न होता है। तो हमारी स्मृति में एक बाबा है, पावरफुल स्मृति है। सर्व आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, हम आत्मिक रूप में भाई भाई हैं, ये हमारी वृत्ति है। और हमारी दृष्टि बहुत पवित्र, संपूर्ण पवित्र, दृष्टि में जरा भी देह अभिमान नहीं दिखाई देता। इतनी निर्मल शीतल पवित्र दृष्टि है, बोल में मधुरता और सरलता है, कर्मों में सब आत्माओं को सुख मिले, ये अंदर की भावना है। व्यवहार इतना मिलनसार हो, जो सब कहें ये अपने हैं ये मेरे हैं, देखना अपना ऐसा चित्र ऐसी तस्वीर है। संगम युग पर जब ऐसी तस्वीर बनती है तब भविष्य की तस्वीर तैयार होती है। तो इस तस्वीर के अंदर अपनी स्मृति, अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि, अपने बोल, अपने कर्म, अपना व्यवहार, ये सब चेक करके अपनी बहुत अच्छी तस्वीर का निर्माण हम खुद कर सकते हैं। मीठे बाबा ने दो स्वरूपों से हम सबकी पालना की है। एक बाबा हमारा भाग्य विधाता है और दूसरा हमारा बाबा वरदाता है। ब्रह्मा बाबा को भाग्य विधाता कहते हैं, भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता है, और शिव बाबा वरदाता है। भाग्य विधाता ने हम सभी बच्चों को भाग्य बनाने की बड़ी सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं। तकदीर माना भाग्य। तो अब हम सभी अपने आप को चेक करें, हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। क्या ब्रह्मा बाबा ने हम सभी ब्राह्मणों को भाग्य बनाने के लिए कोई कलम दी है? ऐसा श्रेष्ठ कर्म, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प, जिस श्रेष्ठ कर्मों के आधार से, संकल्पों के आधार से हम बहुत सुंदर ऊंचे से ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। हर एक अपनी तकदीर को अपने श्रेष्ठ कर्मों की कलम से बहुत ऊंचा बना सकता है। तो आप सब जो आज क्लास में बैठे हैं, आप अपने आप से पूछना, क्या बाबा ने हमारे हाथों में वो कलम दी है? किसके किसके पास कलम है? सबके पास, माताओं के पास है। श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता? बाबा ने हमें कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाई। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को कर्म करने की कला सिखाते हैं। श्रेष्ठ कर्मों से हम अपनी ऊंची तकदीर, उसकी तस्वीर बनाते हैं, और इसी आधार से सत्युग और त्रेता में आधा कल्प तक इस समय की बनाई हुई तकदीर का भाग्य प्रालब्ध के रूप में हम सबको ऐसा प्राप्त होता है जो कर्म करते हुए भी कर्म का कोई खाता नहीं बनता, हिसाब किताब नहीं बनता, कर्म अकर्म बन जाते हैं। कोई भी कर्म न विकर्म बनता है न श्रेष्ठ कर्म बनता है, लेकिन कर्म क्षेत्र पर कर्म तो देवताओं को भी करने पड़ते हैं, लेकिन वो कर्म बंधन नहीं बनते, कर्म विकर्म नहीं बनते, कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कोई प्रारब्ध नहीं रहती। उसका मूल कारण बाबा ने सुनाया कि जो संगम युग पर आप बच्चों ने श्रेष्ठ कर्म किए, उससे जो आपकी तकदीर बनी, उस तकदीर का फल भाग्य के रूप में आप आधा कल्प तक भोगते हो। उसके बाद जब देह विमान में आए बॉडी कॉन्शियस में आए, द्वापर युग शुरू हुआ, विकारों के अधीन आत्मा हो गई, देह अभिमान में आई, तो जो कर्म हुए वो सब भी कर्म के खाते में चले गए, तस्वीर बिगड़ने लगी। फिर संगम युग पर बाबा ने आकर अपने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म की कलम दे दी, लो बच्चे श्रेष्ठ कर्म की कलम। कर्म तो हम ब्राह्मण सभी कर रहे हैं, लेकिन कौन से कर्म एक राजाओं की तकदीर, राजाई पद प्राप्त करा देते, कौन से कर्म हमें दास दासी नौकर चाकर में ले जाते। कर्म ही ऐसा सिद्धांत है, कर्म एक ऐसा अमिट छाप है जिसका फल हम सबको आधा कल्प के लिए भोगना पड़ता है। तो इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, और उसमें भी हम सब के आगे हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा श्रेष्ठ कर्म करने के निमित्त बने। इतने श्रेष्ठ कर्म किए जो नर श्री नारायण समान बने। कर्म ऐसे हो, कहते करनी ऐसी हो जो नर नारायण बन सके। कौन से ऐसे कर्म थे ब्रह्मा बाबा के? बाबा ने अपने आप को सब कुछ करके, सब श्रेष्ठ कर्म करके छिपा लिया, कहीं भी उन कर्मों का वर्णन चिंतन नहीं किया। बच्चे कभी भी बाबा की कोई ने महिमा की, बाबा कहे बच्चे मैं कुछ नहीं करता, ये तो मेरे बच्चे करते हैं सब, या मेरा बाबा करता है। सब कुछ करके इतना बड़ा यज्ञ रचा, इतने बड़े परिवार की, यज्ञवत्सों की पालना की, इतनी सेवाएं की, इतना विरोध सहन किए, इतनी परिस्थितियों को पार किया, लेकिन कभी भी उनका चिंतन और वर्णन नहीं किया। किसी के आगे ये नहीं कहा ये बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं, ये मुझे गालियां देते हैं, लेकिन ऐसा गुप्त श्रेष्ठ कर्म किया जो आधा कल्प सत्युग त्रेता के अंदर सबसे श्रेष्ठ राज्य पद का अधिकारी बना, नर श्री नारायण बन गया। तो वो श्रेष्ठ कर्म इस संगम पर हम सब ब्राह्मण बच्चों को करने हैं, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए। कभी भी कर्तापन का भाव भान ना आ जाए, कराने वाला करा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर जरा भी कोई कर्मों में सूक्ष्म रूप में भी मैंपन का अभिमान आ जाएगा तो कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं कहलाएंगे, उससे ऊंची तकदीर नहीं बनेगी। अभी अभी किया, अभी अभी मान शान नाम कमा लिया, तुरंत फल मिल गया, कच्चा फल खा लिया, लेकिन जिन आत्माओं ने सब कुछ किया और कभी ये नहीं कहा कि मैं करता हूँ, सदा बाबा की तरफ ध्यान खिंचवाया, कराने वाला बाबा है, वो निमित्त बना करके अपने बच्चों से करा रहा है, ये मेरा भाग्य है जो मुझे सेवा का चांस मिला। बाबा ने हमारी योग्यताओं को यूज कर लिया, लेकिन उसकी कमाल है जिसने हमें पहचाना और पहचान करके अपनी इस महान कार्य में, विश्व नव निर्माण के कार्य में अपना सहयोगी बना लिया। ये कितनी बड़ी ऊंची तकदीर है, जब इस सृष्टि रंगमंच पर नई सृष्टि बनाने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है, उस समय उनके इस महान कार्य में किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बन जाना, तन से, मन से, धन से, जो कोई बाबा ने विशेषता दी है उन विशेषताओं से, उन योग्यताओं से बाबा के स्थापना के कार्य में सहयोगी बनने का भाग्य मिलना, ये बहुत ऊंची तकदीर की निशानी है। आप सब तकदीरवान बाबा के बच्चे हैं, कोई न कोई ईश्वरीय सेवा के कार्य में अगर हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, मददगार बनते हैं, कुछ सफल करते हैं, तो भगवान की दुआएं मिलती हैं। एक छोटी सी कहानी हमारे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं जब रामेश्वरम में पुल बांधा गया लंका पर चढ़ाई करने के लिए, जो राम की सेना थी बड़े बड़े पत्थर उठा रही थी और उठा उठा करके वो जल में डालती थी, तो कुछ बानरों को एक वरदान था कि वो पत्थर जिस पर राम नाम लिख दिया वो तैरने लगते थे। तो बहुत अच्छी तरह से सब अपना अपना कार्य कर रहे थे, पुल बांधने में सब लगे हुए थे, तो एक छोटी सी गिलहरी वो बार बार पानी में सागर में जाती, भीग करके गीली हो करके आती और बाहर रेत में ऐसे लिट जाती, काफ़ी रेत उसके ऊपर बालों पर आ जाती, फिर दौड़ के पुल के ऊपर जाके ऐसे झाड़ देती, फिर आती, फिर ऐसे करती, बार बार पानी में जाना, रेत को भरना अपने बालों में और पुल पर जाके झाड़ आना। तो हनुमान जी को आया, ये क्या कर रही है छोटी सी गिलहरी, तो उसको पकड़ करके राम के पास ले गए, ये देखो क्या करती, बार बार भीगती है, गीली हो करके रेत को उठा लेती है, फिर झाड़ती है जाकर। तो राम ने पूछा, क्या कर रही हो? बोली, पुल पर आप चलेंगे, कहीं नीचे ऊपर आपका पैर पड़ जाए, इसलिए मैं रेत डाल करके पुल को समान कर रही हूँ। तो राम को उसके प्रति बहुत प्यार आया, बहुत स्नेह आया कि एक गिलहरी को भी अकल है कि हम भी कुछ तो सहयोग दें पुल बनाने में। तो कहते हैं उन्होंने उसको इतना आशीर्वाद दिया, अपने हाथ की अंगुली ऐसे फेर दी, तो आज तक गिलहरी के ऊपर चार उंगलियों के निशान बने हुए हैं, यादगार है। तो आप सब बाबा के बच्चे ऐसे समझदार तो हैं ना, स्थापना के कार्य में अगर हम बच्चों का थोड़ा सा भी कोई सहयोग किसी भी तरह से, कई लोग करते जरूर हैं लेकिन करने के बाद 10 जगह बता देते हैं, वर्णन करते हैं, सुनाते हैं, दिखावा करते हैं, बाबा कहते हैं उसका भाग्य माइनस हो जाता है।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। अविनाशिया आत्मा सुन लो मेरी आवाज।
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज।
तू है एक अविनाशिया आत्मा सुन लो मेरी आवाज।
सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज।
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है तारा। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है तारा। योगी जीवन है तारा। योगी जीवन है तारा।
स्वर्णिम दुनिया बनाने का महान कार्य जो बाबा अपने बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। बच्चे अगर निमित्त भाव से निर्माण बन करके इस कार्य में सहयोगी बनते हैं तो उनकी तस्वीर तकदीर की बहुत अच्छी और ऊंची बन जाती है। बहुत श्रेष्ठ तस्वीर बना लेते हैं। बाबा अपने बच्चों को ये भी समझ देते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या बनना है। बहुत बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। संगम युग पर स्वर्ग की दुनिया सतयुगी दुनिया की राजधानी बन रही है और राजधानी में पद नंबर वार हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। कोई राजा रानी है, कोई उनकी रायल प्रजा है, रायल घराना है, कोई साहूकार प्रजा है, कोई नौकर चाकर हैं, कोई दास दासियां हैं। पूरी राजधानी की स्थापना इस संगम के समय पर हो रही है। उस राजधानी में मैंने कौन सी तकदीर बनाई है जो अपना ऐसा पद इस समय निश्चित करेंगे? क्या मैंने गुप्त रीति से योग तपस्या करके अपनी इंद्रियों पर शासन किया है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित हैं। एक एक कर्म इंद्रियों पर मेरा राज्य है, मेरी अपनी प्रजा मेरा कहना मानती है। क्या हमारे हर बोल हर कर्म से इतनी आत्माएं प्रेरित हो रही हैं कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी ऐसी जीवन बनानी चाहिए, ऐसी रायल प्रजा तैयार की है? अगर स्वराज्य अधिकारी बनकर राज्य दरबार चलानी है तो रायल प्रजा भी बनानी है। साथ साथ साहूकार प्रजा जिसने बाबा के कार्य में हर प्रकार से गुप्त रीति से किसी न किसी प्रकार से अपना धन सफल किया, कोई के आगे वर्णन नहीं किया, आवश्यकता के अनुसार सफल कर लिया, उसका भाग्य उसकी तकदीर बन गई। उस भविष्य में भी बहुत श्रेष्ठ साहूकार पद प्राप्त करता है। कई बार बाबा कहते हैं राजाओं को भी साहूकारों से सहयोग लेना पड़ता है। तो ऐसी साहूकार प्रजा फिर दास दासियां, अगर हम इस समय अपने पर भी शासन नहीं कर पाते, हम कहीं न कहीं अपनी खुशी गायब करके उदास हो जाते हैं, इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, तो दास दासी बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ऐसी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, ऐसी तस्वीर तैयार करने के लिए संगम युग पर इतनी गहरी पढ़ाई पढ़ाई, नॉलेज फुल बनाया, समझदार बनाया। बच्चे समझ से इस समय ऐसे संकल्प की रचना करो जो संकल्प इतने शुद्ध पॉजिटिव सकारात्मक हो। कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। इतने श्रेष्ठ संकल्प हैं, जो संकल्प सफल होने वाले हैं वही संकल्प उठें। ड्रामा के रील के अंदर जो सफल होने वाले संकल्प हैं उनकी उत्पत्ति हो, उस पर अटेंशन है, या जो आया सोच रहे हैं, चिंतन चल रहा है अपने ऊपर, अपने संकल्पों पर ही ब्रेक नहीं है। संकल्प की एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको बाबा कहते हैं संकल्प एक बीज है, और इस संकल्प रूपी बीज को जिस आत्मा ने शक्तिशाली बना लिया, अच्छा चिंतन करके, शुभ चिंतन करके, शुभ चिंतक बन करके, उसके बोल और कर्म अपने आप अच्छे महान हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो हम सब अपनी ऊंची तस्वीर बनाने के लिए, श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए अपने आप को चेक करें, क्या बोल में इतनी सरलता और मधुरता है, या जब आया जो आया बोल दिया। कई आत्माएं बहुत जल्दी एक दूसरे को कुछ न कुछ बोल करके अपसेट कर देती हैं। अंदर जो भरा होता है किसी के प्रति, वो बाहर अचानक मुंह से निकल जाता है। इसलिए अगर अपने बोल पर कंट्रोल नहीं है तो संबंधों में दूरियां बढ़ती हैं, टकराव होते हैं, और सब उसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। बाबा ने अपने बच्चों को अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन दिया, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो आवश्यक है वही बोलो। ब्रह्मा बाबा ने हमारे आगे एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया, अपनी ऐसी श्रेष्ठ तकदीर बना करके दिखाया, प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, संगठन नहीं छोड़े, कार्य व्यवहार नहीं छोड़ा, लेकिन सब कुछ करते हुए एक बहुत सुंदर बैलेंस रखा, और वो बैलेंस था न्यारे और प्यारेपन का। प्यार इतना बच्चों से कि जैसे बस बाबा बच्चों का है, और एक सेकेंड में न्यारे हो जाना, किसी में भी लगाव झुकाव नहीं, देह से भी न्यारे, देह अभिमान से भी न्यारे, देह के संबंधों से न्यारे, और अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके अपनी तस्वीर में रूहानियत का रंग भरा। आप सब देखना, जैसे दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो चेहरे की सब चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, ऐसे क्या मेरी इस तस्वीर में रूहानियत का रंग भरता जा रहा है। जितना अंतर्मुखी रहेंगे, जितना बाह्य रसों से उपराम रहेंगे, आत्मिक स्थिति का जितना अभ्यास करते रहेंगे उतना हमारे चेहरे से रूहानियत झलकेगी। जैसे कहते हैं नियत में भी रूह है, ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। बाह्य मुक्ता समाप्त हो जाएगी तो अपनी अलौकिक तस्वीर को देखना, हर एक चेक करना, बाबा के बनने के बाद मेरे चेहरे पर रूहानियत कहाँ तक आई है, रुहाब कहाँ तक आया है। रुहाब भी एक शुद्ध श्रेष्ठ अभिमान है, जैसे रोब है, कहते बड़े रोब से चलता है, इसका बोलना कैसा है, इसका उठना कैसा है। रोब भी अहंकार का दूसरा रूप है, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को रोबदा नहीं बनाया, उनके अंदर रुहाब भरा, ऊंचा सम्मान दिया, तुम किसके बच्चे हो, स्वयं भगवान तुम्हें बाप शिक्षक सतगुरु के रूप से पढ़ा रहा है, सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारा साथी है, तुम शिव के साथ कंबाइंड शक्तियां हो। कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए। और जो आत्माएं श्रेष्ठ सम्मान में रहती हैं उन्हें अभिमान नहीं आता, उनको किसी के अपमान की फीलिंग भी नहीं आती, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, इसने मुझे ऐसे बात किया, अपमान की फीलिंग नहीं आती। जिसमें थोड़ा भी अभिमान होगा, अगर जरा भी उसको कोई साधन नहीं मिलेगा, कोई उसको प्यार से बात नहीं करेगा, कोई उसकी बात मानेगा नहीं, कट कर देगा, तुरंत अपमान महसूस होगा, ये मेरा अपमान किया गया, अपमान उसको सहन नहीं होता, और फिर कुछ न कुछ मुख से कटु वचन, कुवचन, गलत वचन निकल जाते। इसलिए बाबा ने हम सब की श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए हमें सम्मान दिए, भिन्न भिन्न सम्मान, और जब उन सम्मानों की स्मृति में हम रहते हैं तो आत्मा बहुत निर्माण बन जाती है, बहुत निर्माण। जैसे हमारी दादियों को देखा, गुलजार दादी को तो सबने देखा है ना, कहीं भी बिठाओ, कुछ भी खिलाओ, इतनी निर्माण चित, इतनी सरल स्वभाव, सबके साथ मिक्स हो जाना। जरा भी ये नहीं था मैं बाबा का रथ हूँ, बहुत निर्माणता से, बहुत सरल चित्त जीवन, बहुत मधुर मिलनसार। हम लोगों को तो कई बार चांस मिलता था उनके साथ पिकनिक करने का, हर हफ्ते इधर से उधर कहीं जाना, पिकनिक करना, बैठना, इतनी निर्माणता से, सरलता से। एक बार हम नदी पर एक तरफ गए, कुर्सी नहीं ले गए थे, दादी को कहाँ बिठाएं, पत्थर को साफ किया, पहाड़ी को, चट्टान को, और उसी पर एक गौछा बिछा करके दादी को बोला, दादी आप इस पर बैठ जाओ। इतनी निर्माणचित, सबके साथ बैठ जाना, सबके साथ मिलके खाना, थाली है तो ठीक है, नहीं जैसे सब खा पी रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐसे दादी, जरा भी अभिमान नहीं। इतना ऊंचा सम्मान था कि भगवान का रथ, उनके चलने से, उनके बोलने से, उनकी दृष्टि से स्पष्ट दिखाई देता था कि भगवान ने इनकी तस्वीर कितनी ऊंची बनाई है। और वो तस्वीर ऐसी सरल, मधुर, मिलनसार, लेकिन ऊंचे सम्मान में रही। हम सब बाबा के बच्चों को भी अपनी तस्वीर ऊंची बनानी है ना, अच्छी तस्वीर बनानी है, तो रूहानियत और रुहाब धारण करके चलना, बहुत नम्र चित्त। निर्माण के कार्य के लिए हम सबको बाबा ने निमित्त बनाया है, हमारे किसी बोल से, किसी कर्म से डिस्ट्रक्शन न हो। हम कंस्ट्रक्शन करने वाली आत्माएं हैं, निर्माण करने वाली आत्माएं हैं। बाबा ने नौ निर्माण का कार्य दिया है और नौ निर्माण वही कर सकता है जो बहुत नम्र चित्त निर्माण चित्त है। ये दोनों शब्द समान है, लिखने में भी समान आते हैं, निर्माण निर्माण। जितना हम निर्माणता को धारण करते हैं, नम्रता को धारण करते हैं, उतना हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहार से एक निर्माण का कार्य होता है। तो हम सबको बाबा ने विश्व नौ निर्माण का कार्य दिया है। बहुत बड़ा कार्य है, इतने बड़े विश्व का परिवर्तन भले हम सब देख रहे हैं, प्रकृति, साइंस, साधन, कलयुगी मानव आत्माएं प्रेरित होकर के इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चे स्थापना का गुप्त कार्य कर रहे हैं। सृष्टि अनादि अविनाशी है, इसको कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता, परिवर्तन होता है। ये कलयुगी सृष्टि के विनाश की तैयारियां हैं, लेकिन परमात्म प्लान है नई सृष्टि की स्थापना। और वो जो गुप्त रीति से स्थापना का कार्य इतना विस्तार का रूप ले रहा है, उस स्थापना के कार्य में निमित्त कौन है? बोलो, हम हैं। बाबा ने हम सबको उस स्थापना की सतयुगी दुनिया बनाने के लिए तैयार कर लिया, इतनी सेना तैयार कर ली है। सबके अंदर है कि भारत भूमि देव भूमि है, पूरा विश्व ही भारत कहलाएगा, एक खंड नहीं, टुकड़ा नहीं। जो भी विनाश के बाद बचेगा वो भारत कहलाएगा, भारत खंड। और उस भारत खंड पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण एक छत्र राज्य करेंगे और उनकी प्रजा पिता तुल्य पालना के कारण बच्चे समान पालना लेगी। ऐसी ऊंची तकदीर बनाने का कार्य बाबा के बच्चे, बाबा खुद कर रहा है, बच्चों से करा रहा है। हम सब उस कार्य के निमित्त हैं कि अब वो नई सृष्टि, सतयुगी सृष्टि की स्थापना हमें करनी है, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, धर्म और राज्य दोनों सत्ताएं एक ही पावर के पास, ऐसी स्वर्णिम दुनिया बनाने वाले। अगर इस समय एक धर्म में नहीं रहते, अनेक धर्म, अनेक प्रकार की मतें, अनेकता में एकता चाहिए। भले हम सब जानते हैं संस्कार भिन्न हैं, भिन्न रहेंगे, नेचर भिन्नता संपन्न है। कोई कहे एक जैसे संस्कार सबके हो जाएंगे, एक जैसे संस्कार नहीं होते, न एक जैसी नेचर होगी, लेकिन भिन्नता में एकता लाना, एक ने कहा दूसरे ने माना। हमारी दीदी दादी ने उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब दीदी दादी के ऊपर यज्ञ की कारोबार आई, प्रशासन आया, तो उन्होंने इतना सुंदर मिसाल स्थापित किया कि सबको साथ लेकर के, सबको अपने से आगे रख करके, अपने से भी बड़ा समझ करके, स्नेह और सम्मान दे करके एकता के सूत्र में पिरोया। चाहे बहनें थी, चाहे भाई थे, चाहे दादियां थी, सबको साथ लिया, उनको इतना रिस्पेक्ट दिया और उसके आधार से सेवाओं का विस्तार किया। जो साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने वाणी चलाई, कहा था दीदी दादी ने मिलकर एक साथ उन सब सेवाओं को संपन्न करा किया। देश विदेश में बाबा के कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी। कितना सुंदर विस्तार, बाबा के समय साकार के समय 1 लाख भाई बहने भी नहीं थे, आज 14-15 लाख का इतना बड़ा परिवार खड़ा हो गया। देश विदेश में हजारों सेवा केंद्र खुलवा दिए, सबको एकता के सूत्र में पिरो दिया, लेकिन कोई कोई आत्माएं हदों में आकर के छोटी छोटी बातों में, जो एक हमारा आदर्श है ब्रह्मा कुमारी का, हम सब एक हैं, एक के हैं, एक का नाम वाला करना है, उसकी जगह पर छोटी छोटी बातों में मन मुटाव, मत भेद, और वो जब कोई देखता है तो कहता है यही पढ़ाया है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को, बाबा कई बार प्यार से कहते हैं बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। जो ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने इस परिवार को एकता के सूत्र में बांधा, हर आत्मा की विशेषताओं को ध्यान पर रखा, ये नहीं सोचा इसके अंदर तो इतनी कमियां हैं, इतने संस्कार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, जो बाबा का बच्चा बना है उसके अंदर जरूर कोई न कोई विशेषता है, और उसी विशेषता को परखा और परख करके इस कार्य में लगा दिया। एक भी विशेषता किसी में थी, अगर उसने सच्चाई से बाबा के यज्ञ में उस विशेषता को लगाया तो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आई, वो विशेष आत्मा बन गई। ऐसे बाबा ने, दादियों ने हम सब की विशेषताओं को देख करके यज्ञ का इतना सुंदर विस्तार किया, नई दुनिया की स्थापना के लिए इतना अच्छा संगठन बनाया। अब हम सबको उनकी मिली हुई शिक्षाओं को, उनकी मिली हुई पालना को प्रैक्टिकल रिटर्न करना है, वैसा बन करके दिखाना है। उसके लिए कोई नाम मान सान का अगर भूखा भी है तो दे दो, बाबा कहता है तुम दाता के बच्चे हो, मांगता नहीं हूँ, बाबा ने बहुत कुछ दिया है, अगर कोई को कुछ चाहिए तो दे दो, कम नहीं होगा आपका, लेकिन बड़े दिल वाले बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा की बड़ी दिल, हमारी दादियों की बड़ी विशाल दिल, बेहद में रही, कभी भी हद में नहीं फंसी, सब बाबा की है, धर्म भेद नहीं, जाति भेद नहीं, भाषा भेद नहीं, प्रांत भेद नहीं, एरिया भेद नहीं, लेकिन सब बाबा के हैं। इतनी बेहद की भावना, ऐसी सुंदर दृष्टि रखकर बाबा ने, हमारे बड़ों ने इतने सुंदर ब्राह्मण परिवार को संगठित किया है। हम सब मिलजुल करके अपनी भी तकदीर ऐसी श्रेष्ठ बनाई और अनेकों को प्रेरित करके उनकी भी तकदीर श्रेष्ठ बना दें, उनको भी इस कार्य में तन मन धन सफल करने की प्रेरणा दें। हम सब अगर सिर्फ निमित्त भाव से निर्माण चित बन करके निर्माण का कार्य करें, हर एक की विशेषताओं को देखें और विशेषताओं को देखकर उनको सेवा में लगाएं, अपनी विशेषताओं को भी बाबा के कार्य में लगाएं, तो हमारी अपनी तकदीर, अपनी तस्वीर अच्छे से अच्छी बन जाएगी। हम सबके हाथ में कलम है, भ्रूस दिया है बाबा ने, बनाओ बच्चे अपनी तस्वीर, देखो बनती है या नहीं। बहुत अच्छे सकारात्मक संकल्प, बहुत पॉजिटिव चिंतन, और ऐसे मधुर सरल बोल, सम्मानजनक बोल, जो आवश्यक है वही बोलना, और कर्मों से, हाथों से काम करके कर्मयोगी बन करके कराने वाले की स्मृति में सब कुछ किया और समर्पित कर दिया, ये सब श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। और ऐसे श्रेष्ठ कर्म, ऐसे शुद्ध मधुर बोल और ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हमारी सुंदर तस्वीर की रचना करते हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे संगम पर भी अपनी तकदीर को देखें। सब दुनिया चारों तरफ हाहाकार में है और संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं कितनी बेफिक्र भाषा निश्चिंत स्थिति में बैठी हैं। कोई चिंता है कल क्या होगा? सब अच्छे से अच्छा होगा। कलयुग जाएगा, सत्युग आएगा, इसलिए कोई भी चिंता नहीं, कोई भी फिक्र नहीं। एक एक बाबा का बच्चा बेफिक्र बेगमपुर का बासा और उसका आधार संपूर्ण निश्चय। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है ना? स्वयं में निश्चय है, अपने बाबा में निश्चय है, इस कल्याणकारी ड्रामा में निश्चय है और इतने सुंदर दैवी परिवार में निश्चय है। जो आत्माएं ऐसी निश्चय बुद्धि हैं, जिन्होंने पक्का किया है फाउंडेशन को, वो निश्चिंत हैं, निर्भय हैं, निडर हैं। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। पुण्य की पूंजी जमा की हुई है, जो कुछ होगा वो पुण्य की पूंजी तो साथ जाएगी। न करोड़ जाएंगे, न अरब जाएंगे, न धन संपत्ति साधन संबंध जाएंगे, लेकिन हमने जो पुण्य की पूंजी अर्जित की है, गुप्त दान महापुण्य, जो गुप्त बाबा के कार्य में सेवाओं में सफल किया, जो शक्तियाँ लगाई, पवित्र वाइब्रेशन से इस वायुमंडल को शुद्ध बनाया, शुद्ध संकल्पों की शक्ति से, शुभ भावनाओं से अनेक आत्माओं तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाया, ये सब पुण्य की पूंजी है। और इसी पुण्य की पूंजी के आधार से हम सब अपनी ऊंची तकदीर बना रहे हैं। इसलिए सब ध्यान देना, संगम युग ही है अपनी तकदीर बनाने का समय। और बाबा है हमारा भाग्य विधाता, और वो भाग्य विधाता बाबा ने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तकदीर की तस्वीर बनाने के लिए कलम दे दी है। बना लो बच्चे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, करना है सो आज कर, कल किसने देखा। इसलिए हर एक लक्ष्य रख करके, बाबा तूने जो शक्तियाँ दी हैं वो सब बाबा आपके काम में सफल हो जाए, कुछ भी निष्फल न जाए। तो हम सब अपनी ऊंची तकदीर बनाएं और आने वाली सतयुगी दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी, सभा को देख के लग रहा है सबके मस्तक पर उनकी तकदीर के सितारे अभी ही चमक रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है और अभी ये चमक को हम कायम रखेंगे। हम भाई जी से वादा करते हैं कि हमारी श्रेष्ठ तकदीर की सुंदर तस्वीर हम बना कर छोड़ेंगे। सबकी तरफ से आदरणीय राजू भाई जी को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया भाई जी।
स्वर्ग का सृजन करूं ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु। कदम चले हैं हम, सौ कदम बढ़ाया है, एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु। गा रही है जिंदगी काम उनके आगे।